बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला चैप्टर है अहमियतुत तहारा, तहारत की अहमियत। तहारत के बगैर नमाज नहीं होती। अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा इन्नी समितु रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल ला तुक्बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन वला सदकतुम मिन गलूलिन, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता और माल गनीमत से चोरी किए हुए माल का सदका कबूल नहीं करता। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यहाँ पहली बात देखिए कि अनहुमा का लफ्ज़ क्यों आया। इसलिए कि बाप और बेटा दोनों सहाबी थे और दोनों के लिए ये एहसास हुआ, अनहुमा इन दोनों पर, यानी अब्दुल्ला पर भी और उनके बाप उमर पर भी। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ठीक है, ये बात आपका कॉल था जो आप तक पहुंचा। फिर अगली बात पता चली कि नमाज तहारत के बगैर कबूल नहीं होती। आज आप देखिए कि कितने तरीक़ों के साथ इंसान अपने आप को दूर कर लेता है तहारत से। बाज़ दफ़ा सही तरीके से इस्तंजा ना करना, बाज़ दफ़ा जिस जगह पे वज़ू किया जा रहा है वहाँ पे पेशाब के छींटे होंगे, और ख़ास तौर पे बाज़ माएँ जिनके घरों में बच्चे भी होते हैं तो वो इसकी बिल्कुल अहमियत का ख्याल नहीं रखती। ख़ास तौर पे लड़कों को, बच्चों को ट्रेन नहीं किया जाता तो वो फ्लश के अंदर भी इस तरीके से उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि ऊपर भी उसके छींटे होते हैं। बस लोग फ्लोर के ऊपर भी इस तरह के यानी काम किए देखे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इंसान जब साफ़ होता है ना तो उसका दिल भी साफ़ होता है। और अगर आपके कपड़े गंदे हैं, बाज़ लोग काम कर रहे हैं और साथ नाक साफ़ कर रहे हैं, फिर वही कपड़ों को लगा रहे हैं, बाद में काम करते हुए हो सकता है कपड़ों को हाथ लग जाए, बच्चे ने अगर कुछ ऐसा गंदा काम किया हुआ है तो उसको पकड़ लिया और फिर उन्हीं हाथों से खाना पकाने लग गए। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए अहम है, ख़ास तौर पर जब वज़ू किया जाए। फिर दूसरी बात देखिए, माल गनीमत से चोरी किए हुए माल का सदका है, तो इससे मुराद हर फिर वो माल है जो गलूल से या धोखे से हासिल किया गया हो। मसलन अगर ऐसा इंसान का माल है कमाने का तरीका कि जो सही नहीं है, तो उसके ज़रिए से भी किया हुआ माल फिर अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। अगली रिवायत देखते हैं। अन अबी सईद अल खुदरी जी रदी अल्लाहु अन्हु अनिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल मिफ्ताहु सलाती अत्तहूरु व तहरीमहत तकबीर व तहलीलुहत तस्लीम, रवाहु इब्न माजा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, तहारत नमाज की कुंजी है यानी चाबी। नमाज की इब्तदा तकबीर से और इख्तिताम सलाम फेरना है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। इस रिवायत में आप देखिए कि नमाज की कुंजी तहारत को कहा गया। जैसे चाबी के साथ कोई दरवाज़ा खुलता है ना, इसी तरह वुजू के ज़रिए से या तहारत से नमाज का दरवाज़ा खुलता है। और नमाज की इब्तिदा तकबीर ये कौन सी है, जो इब्तिदा में अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे जाते हैं और अख्ताम पर तस्लीम यानी सलाम फेरना। यहाँ लफ्ज़ अरबी में आप देख रहे थे तहरीमहा, हुरमत से, यानी जो ही एक बंदा तकबीर कह देता है बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हराम हो जाती हैं जो नमाज से अलावा वो कर सकता था। और तस्लीम के साथ तहलील यानी हिल्लत हो जाती है कि जब वो ये काम कर लेता है तो फिर वो बाकी काम जिनसे उसको रोका गया था वो उसके ऊपर हलाल हो जाते हैं। पेशाब करने के बाद तहारत से गफलत बरतने से अज़ाब कब्र होता है। अनिब्ने अब्बासिन रदी अल्लाहु अन्हुमा कौल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول رواه البزار والتبراني والحاكم والدار قطني. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو. اسے بزار، تبرانی، حاکم اور دار و قطنی نے روایت کیا ہے. یہاں دیکھیے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی بات جیسے کہ ہم نے کی، یہ ایک اتنا عام سا فعل سمجھا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں لی جاتی. خاص طور پہ جو ویسٹرن طریقے سے ٹوائلٹس بنتے ہیں اس کے اندر تو بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور خاص طور پہ جب لوگوں کو وہ استعمال بھی نہ کرنے آتے ہوں. اس لیے انسان کوئی بھی طریقہ استعمال کرے ریسٹ روم میں، بعض دفعہ یعنی کچھ ایسے طریقے ہیں جیسے ایک ہمارے ہاں عموماً نیچے بیٹھ کے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص پوری احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کرے تو پاؤں پہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ دیکھیے کہ آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہیں اور تیمم کرتے ہیں اس پہ، تو بہت احتیاط کرے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ بڑا باشعور بناتے ہیں. ہر چیز کرتے ہوئے پہلے سمجھو، نپے تلے قدم اٹھاؤ، بات کرو تو نپے تلے لفظ بولو، چلو تو ایسے چلو کہ تمہارے ارد گرد چیزیں جو وہ تمہارے چلنے کی رفتار سے ہلنے نہ لگے، جیسے ہواؤں میں چیزیں ہلنے لگتی ہیں. بس لوگ چلتے ہیں تو ارد گرد کی چیزیں گرا رہے ہیں، گزر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس ان کو ہی گزرنا ہے، کھا رہے ہیں تو چپ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرانے والی چیزیں، حتیٰ کہ ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آج بھی جو شخص بہت نپا تلا ہوگا وہ کبھی اس کے اوپر چھینٹے نہیں آئیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے رکے رہتے ہیں، جب بہت زیادہ زور پڑتا ہے پھر ریسٹ روم میں جاتے ہیں. یہ بھی ایک اس کی ٹپ ہے کہ اگر آپ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ حاجت ہونے سے پہلے ہی چلے جائیں، تاکہ آپ کو کچھ کنٹرول ہوگا. پھر وہاں بیٹھنے سے پہلے ایک نفے میں دیکھ لیجئے کہ اگر سیٹ پہ کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو وائپ آؤٹ کر لیں، اور اس کے اوپر یعنی اگر آپ خود اپنے لیے دیکھیں تو اس کو صاف کر لیں. اور بہت دن سے میری خواہش تھی کہ ہم ادھر بھی، اور میں نے ذکر بھی کیا تھا غالب بناسیہ سے، کہ ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے ہم یہاں کچھ مینرز جو ہیں وہ لکھیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کی زبان سے سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. کبھی میں جاؤں چیک کروں تو میرے دل میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ میں اس کو دیکھوں اور آپ سے ذکر کروں، لیکن اچھا کہ آج یہاں بات ہوئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ ٹوائلٹ یوز کریں تو بالکل اس نیت سے کریں کہ جب میں اندر گئی تھی تو میں نے اپنے لیے کیا پسند کیا، جب میں آؤں گی اور میرے بعد جو نیکسٹ سسٹر جائیں گی وہ اپنے لیے کیا پسند کریں گی. وہی چیز ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں سب سے پہلے جوتا باہر دروازے کے پاس ہو. جو لوگ یہاں کارپیٹ سے اٹھ کے جاتے ہیں، جوتا ادھر ہی نہیں ہے، جوتا اندر پڑا ہوا ہے، یا جوتا ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، یا باہر گیلا جوتا لے آئے، یہ اچھا طریقہ نہیں. مہذب ہونا چاہیے انسان کو، جو جوتا ہے ٹوائلٹ کا وہ بالکل ایک خاص جگہ ہونی چاہیے، وہاں اتاریں. پھر اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں، عموماً انسان جب جاتا ہے تو اس کے پاس اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اندر جائے اور اس وقت پانی بھرے، تو کیا آپ اس سے پہلے نکلنے والے کا یہ اخلاقی فرض نہیں ہے کہ جو بھی وہاں برتن ہے، لوٹا ہے یا کوئی بھی ہے، جب خود فارغ ہو جائے ہاتھ دھونے سے پہلے اس لوٹے کا خالی پانی جو ہے آپ اس کو فلش میں پھینکیے، تاکہ کوئی بھی اگر اوپر چھینٹے سائڈوں پہ لگے ہیں کچھ ہے وہ بھی صاف ہو جائے. پھر آپ صاف پانی کا ایک بھرا ہوا لوٹا بھر کے بڑے سلیقے سے رکھیں. بعض لوٹا بھی ٹیڑھا رکھتے ہیں. میں سوچتی ہوں پتہ نہیں ہمیں جلدی کس بات کی ہوتی ہے، ہم ہر وقت بھاگ دوڑ میں ہیں، ہم سوچتے کم ہیں. لوٹا سیدھے طریقے سے رکھیے سلیقے سے، پھر آپ ہاتھ دھوئیں، اپنے آپ کو چیک کریں. پھر اس کے بعد آپ جو سنک ہے اس کو اگر آپ صاف کریں، وہاں ایک چھوٹا سا ٹاول بھی رکھا ہوتا ہے اس کو صاف کریں. جہازوں میں آپ جاتے ہیں تو دیکھیں کہ پلینز کے اندر لکھا ہوتا ہے فار دی کرٹسی آف نیکسٹ پیسنجر، اس کو وائپ آؤٹ کر دیں. وہاں تو ہم بھی کر دیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ہمارے سنک اتنے گیلے ہوتے ہیں. عام گھروں میں بھی آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے سنگ گیلے ہی رکھتے ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں. دعا پڑھنی نکلنے کی آنے کی، یہ تو اور بات ہے. پھر اتنا وقت نہ لگائیں اس کے اندر کہ باہر لوگ کھڑے ہیں، آپ کہیں کہ شکر ہے میری باری آ گئی ہے. آپ کو جب ضرورت ہو تو آپ کا دل نہیں چاہتا نا کہ انتظار کرنا پڑے. تو انشاءاللہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں باشعور انسان بناتی ہیں. ٹوائلٹ پیپر یوز کریں تو سلیقے سے یوز کریں. یہ صرف میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہی آپ کو، مجھے یہاں کوئی اتنا پرابلم دکھا بھی نہیں الحمدللہ، آپ سب بہت اچھی طرح یوز کرتے ہیں، لیکن میں ایک زندگی بھر کا اصول آپ کو بتا رہی ہوں. اور اگر آج سے یہ باتیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، کبھی آپ کے بچے دوسروں کو تنگ نہیں کریں گے. عموماً دیکھا گیا جہاں لوگ ملتے ہیں، چند لوگ دعوتوں میں ملے پارٹیوں میں، تو ٹوائلٹ کے اندر بچوں نے رولز کو کھول کھول کے اس سے بالٹیاں بھر دی، بعد دفعہ سنک جو ہیں وہ کلاک کر دیے جاتے ہیں ٹوائلٹس. تھوڑا سا استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. एक एक चीज़ कल हमसे पूछेगी कि अल्लाह ताला इससे मुझे ज़्यादा इस्तेमाल किया कि कम किया। कभी मैं जाऊँ और मुझे दो तीन टॉयलेट पेपर खुले हुए इधर उधर दिखे तो मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है। मैं सोचती हूँ कि क्यों हम ऐसा करते हैं। एक वहाँ लगा जिनकी क्लीनिंग की ड्यूटी है, एवरी डे चेक करें, अगर उसमें कुछ कम हो गया तो उसके साथ दूसरा रख दें, जो ही वो ख़त्म हो उसको खाली करके फेंके दूसरा लगा दें। कोई भी लगा सकता है लेकिन क्लीनिंग वालों की ये ड्यूटी होती है। बाकी आप हर जगह उसको रखें, आपकी हर चीज़ देख के बोले कि यहाँ रहने वाले लोग बड़े महज़ब हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं और इनकी ज़िंदगी में सलीका है। इंशाल्लाह आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे आप लोगों को सताएंगे नहीं। वरना जब केयरलेस होते हैं ना, अपने घरों में तो बहुत संभाल के चीज़ें रखते हैं, मस्जिदों में जाके देखें ज़रा लोग किस तरह टिश्यू यूज़ करते हैं। एक की जगह चार उठाते हैं, एक प्लेट की जगह तीन प्लेटें नीचे रखी होती, क्या है जी ये गिर ना जाए। एक कप के नीचे दो कप और रखे हुए, क्या जी ये गर्म बहुत था, तो ठीक है आपने यूज़ किया, अब एक फेंके दो रख लें। हम क्यों समझते हैं कि ये नेमतें हमें ऐसी मिली हैं। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला कहते हैं तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। एक एक्स्ट्रा टॉयलेट का रोल भी हमने यूज़ किया जो हमें नहीं करना था, कल ये भी हमसे पूछेगा कि अल्लाह ताला मैं इतनी मेहनत से बना, इतना कुछ हुआ, दो लोगों का इस एक ने इस्तेमाल कर लिया। और मत सोचें कि हम ही दुनिया में एक हैं, पहले भी हम ही थे और आखिरी भी हम थे। हम इंसानों की जिस दुनिया में रहते हैं हमें दूसरों के लिए खुशी का सबब बनना है। वहाँ अगर फ्रेशनर है आप आते हुए एंड पे थोड़ा सा फ्रेशनर कर दें ताकि अगला आपसे बात वाला जाए तो वो कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा शख्स अंदर से निकला है, कि हमारे टॉयलेट भी फिर इतने चमकते हुए और खुशबूदार हों कि बाकी जगहों का तो फिर इंसान लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत पर्सनल चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस मौके पे बात मुँह से निकल गई और अल्लाह करे कि हमारे ये अमल में आ जाए। फिर ख़ास तौर पे बच्चों की जो पॉटी ट्रेनिंग होती है या वो बच्चे जो बिल्कुल अभी वॉकिंग शुरू करते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा उनको पैक भी नहीं किया जाता, उससे भी वो घर में जगह जगह पेशाब फैलाते हैं, या बाज़ दफ़ा नेपी इतनी देर तक उसकी गीली रखी जाती है कि अंदर वो फिर लीक हो जाती है। बाज़ बच्चों का आप उठाएं तो एकदम उनसे स्मेल आने लगती है, आपका दिल ही नहीं चाहता बात करने को, अलग उस मासूम का कोई कसूर ही नहीं होता। और ये भी एक अजीब सा सिस्टम ही हमारे बन गया ना। और ठीक है सहूलत है, हमारी ज़िंदगी के स्टाइल ऐसे हैं, कारपेटेड रो है तो आप कहते हैं जी पहले दिन से बच्चे को आप नैपी या पेम्पर्स करते हैं, नतीजा कहते हैं उसको समझ ही नहीं रहती। जैसे एक जानवर को नहीं पता चलता, रात चलते आप देखें तो जानवर इतनी गंदगी डाल रहे होते हैं, तो इसी तरह बच्चे को भी बाज़ दफ़ा फिर सेंस ख़त्म हो जाती है कि अब मुझे ज़रूरत है, मुझे करना है नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी माओं के बच्चे होते थे और वो बच्चे को दूध पिलाते ही फौरन रेस्टरूम में ले जाती थी और उसको फारिग करा देती थी। अब बार बार दूध है तो बार बार ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी आती है, और सहूलत यह है कि पैम्पर कर देते हैं। और आप देखें कि बाज़ दफ़ा ओवरऑल करने से, हर वक्त करने से भी बच्चों के लिए कितने प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वही मासूम बच्चे जिनको रैशेज़ पड़ते हैं, नेपिस के रैश हैं, ठीक है ज़रूरत के लिए रखें, आपको लग रहा है इस वक्त आप बिज़ी हैं या कुछ, लेकिन फिर भी बच्चे को सेंस होनी चाहिए। तो बहरहाल हो सकता है मेरी बातें आपको तो बहुत ही बुरी लग रही होंगी, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको बस वो काम करने की तौफीक दे, हम इन बच्चों की सेंस ना ख़त्म करें। इनकी सेंस ख़त्म हो जाती है ना, फिर आप देखिए 5-5 साल के बच्चे, बाज़ बच्चे स्कूलों में जाते हैं और पैम्पर किए होते हैं, हैरत की बात है ना। आपने उसकी समझ ही ख़त्म कर दी और माँ को तो मासूम बच्चा मिला है। आप में से कोई गवाही दे सकते हैं कि छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है जब उसको फारिग होना होता है तो वो रोता है, अपनी टांग सहेड़ता है, और बच्चे को पता चलता है कि अब मुझे कोई फारिग कराए। एक दफ़ा आप उसको गीले बिस्तर का आदि कर देंगे वो फिर कभी भी आपके लिए सुखा नहीं। अगर किसी के बिस्तर पे आप देखें कि यहाँ से फिर वो भी बात आती है कि जो बिस्तरों पे अगर बच्चों को सोते हैं और रात में अगर बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं तो इसका इंतज़ाम करके रखिए। अल्लाह ताला बस हर चीज़ को हमारे लिए आसान करे।